हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए, और इसके लिए वो लोगों से मुंह मांगे कीमत ऑफर करने को भी तैयार थे। फिलहाल झलक ने अब सब लोगों के प्यार में आकर अपनी जिंदगी को एक और मौका देने के बारे में सोच लिया था, और साथ ही साथ सबसे पहले उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने पालने वाले माता पिता यानी अपनी माँ स्नेहा जी को फ़ोन किया था। स्नेहा जी पूरी तरह से शोक में डूबी हुई थी, क्योंकि उन लोगों तक भी झलक के मरने की खबर पहुंच चुकी थी। सौरभ जी तो पूरी तरह से टूट से गए थे, अपनी जवान बेटी की मौत की खबर उन्हें कम उम्र में ही उम्रदराज बना गई थी। लेकिन फिलहाल अब जब झलक ने सीधे खुद फ़ोन ना करके अनामिका से फ़ोन करवाया था और साथ ही उन्हें ये बात बुलवा दी थी कि उन्हें लेने के लिए उनके कुछ आदमी आ रहे हैं तो आप उनके साथ आ जाइए, ये सुनकर स्नेहा और सौरभ दोनों चौंक गए थे। हालांकि स्नेहा जी अनामिका से काफ़ी सवाल करना चाहती थीं, लेकिन जब अनामिका ने उन्हें झलक की कसम दी और सीधा चुपचाप आने के लिए कहा तो वो मजबूर हो गईं। स्नेहा जी ने सौरभ को देखकर काफ़ी सारे सवाल किए, लेकिन सौरभ जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। और फिर जल्दी ही अनामिका ने कुछ आदमियों को झलक के गांव भेज दिया था, और वहां से वो उसके भाई, पिता और साथ ही स्नेहा जी को लेकर शहर आ गए थे, जहां झलक और अनामिका उनका इंतज़ार कर रही थीं। स्नेहा जी और सौरभ दोनों के ही दिल में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी, उनके दिल में काफ़ी सारे सवाल थे। लेकिन स्नेहा जी ने जैसे ही झलक को सही सलामत सामने खड़ा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बहुत बड़ी हो गईं। बिना एक पल गवाए वो दौड़कर झलक के पास गईं और उसे सीधा गले से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगीं। सौरभ जी की आंखों से इस वक्त आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब तक सभी लोग वहां जमा हो चुके थे। दादाजी आरव भी आंखों में नमी लेकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। तब रोहन रोते हुए अपनी झलक दीदी के गले से जा लगा था और लगातार रोते हुए बोला था, दीदी आप कहाँ चली गई थीं? टीवी पर बोल रहे थे आप मर गई हैं, बड़े अस्पताल वालों ने आपको जला डाला है। टीवी पर जो खबर दिखाई जा रही थी वही नन्हे रोहन के दिल दिमाग में बैठी हुई थी, और वो सब उसने झलक को बोलना शुरू कर दिया था। झलक का दिल बार बार भर कर आ रहा था, लेकिन उसने एक आंसू अपना आंखों से बाहर आने नहीं दिया था। फिलहाल स्नेहा जी जल्दी आगे गईं और रोहन को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा बच्चा, तेरी दीदी बिल्कुल ठीक है, मत रो, अब चुप हो जा। जब से इसने टीवी पर वो खबर देखी थी तब से इसी तरह रो रहा है, स्नेहा ने रोते हुए कहा। तब झलक ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया और शांत करने लगी। लेकिन तभी स्नेहा जी की नज़रें जैसे ही आरव मल्होत्रा पर पड़ी तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गईं, क्योंकि आरव मल्होत्रा का चेहरा उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, वो पूरी तरह से जाना पहचाना लग रहा था। तभी आरव आगे बढ़कर स्नेहा से मिला और बोला, स्नेहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा। ये सुनते ही स्नेहा जी तुरंत भाववेश में आरव को देखकर बोली, आरव क्या मुझे भूल गए? अरे मैं स्नेहा और तुम, हम साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। जैसे ही स्नेहा जी ने ये कहा आरव पूरी तरह से हैरानी में डूब गया और उसे तुरंत स्नेहा याद आ गई। उन लोगों की बातें सुनकर झलक को कुछ याद आया। असल में उसी दिन झलक ने जब स्नेहा जी से पूछा था कि आखिर नैना ओबेरॉय ने उसे कूड़े कचरे में फेंकने की जिम्मेदारी आपको ही क्यों दी, तब स्नेहा जी खुद भी काफ़ी हैरान हुई थी। तब उन्होंने झलक को बताया था कि असल में नैना उनकी क्लासमेट थी और उनके साथ ही पढ़ा करती थी। इतना ही नहीं, स्नेहा जी को नैना और ईशान के प्यार के बारे में भी सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी झलक को कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज जब सारा सच उनकी आंखों के सामने आ चुका था तो स्नेहा जी की आंखों से खून के आंसू फूट पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने झलक को सारा सच बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह नैना ने आरव को घुमाया फिराया, उसे धोखा दिया, जबकि असल में उसका झुकाव पूरी तरह से ईशान की ओर था। मैंने उसे समझाने बुझाने की भी बहुत कोशिश की थी, और शायद इसी चक्कर में हमारे बीच एक डील भी हुई थी कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और बदले में वो अपनी जिस बेटी को फेंकने जा रही थी उसे मुझे दे देगी। उस वक्त मैं भी औलाद के बिना थी, मेरे पास कोई अपना नहीं था, इसीलिए मैंने उसका सच अपने तक ही रखा और तुम्हें अपनाने का फैसला किया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन लोगों के खिलाफ खड़ी हो पाती या तुम्हें इंसाफ दिला पाती। जैसे ही स्नेहा जी ने सारी बातें बताईं झलक ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना छोड़ दीजिए माँ, आपकी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। फिलहाल अब अनामिका की मदद से स्नेहा जी, झलक के छोटे भाई रोहन और उसके पिता सौरभ का वहीं पर इलाज शुरू कर दिया गया था। झलक ने उन सभी को वहीं रोक लिया था और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगी। अब वो सब एक फैमिली की तरह साथ रहने लगे थे। फिलहाल अब दिग्विजय सिंह जी अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहते थे और वो झलक और अनामिका को लेकर सीधे अपनी अकादमी भेजना चाहते थे, और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अपने गुरु होने की भूमिका संभालने के लिए सोच लिया था और झलक व अनामिका दोनों को ही एक कड़ी ट्रेनिंग कराना चाहते थे। हालांकि झलक पहले से ही काफ़ी मजबूत थी, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, दिग्विजय सिंह जी ने ठान लिया था कि उनकी पोती को अब शेरदिल बनना होगा, इसीलिए उन्होंने उसकी ट्रेनिंग सख्ती से कराने का फैसला किया था। झलक और अनामिका का आज अकादमी में पहला दिन था। सभी लोग उन्हें हैरानी से घूर घूर कर देख रहे थे। दादाजी ने उन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि तुम दोनों कौन हो, और अगर उन लोगों को ये पता चल गया तो सब तुम्हें VIP ट्रीटमेंट देने लगेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बाकी सब लोगों की तरह ही ट्रीट हो, समझ रही हो मेरी बात? अनामिका तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, दादाजी इसमें तो बहुत मजा आएगा, आप देखना हम जल्दी ही सब कुछ सीख लेंगे, और जब आप खुद सबके सामने हमें इंट्रोड्यूस करेंगे तब कितना मजा आएगा। अनामिका की बात सुनकर झलक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हाँ ना में सिर हिलाती रही। भले ही झलक ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन इतने गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगने वाला था। तभी दादाजी ने अनामिका के कान खींचते हुए कहा, देखो झलक पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी शरारतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम सीरियस जरूर हुई हो, लेकिन असल में तुम कितनी शरारती हो ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब कुछ दिनों तक वो खुद उन्हें ट्रेन करेंगे, फिर बिजनेस की जिम्मेदारियां भी सीखनी होंगी, क्योंकि मल्होत्रा परिवार का बिजनेस अब उसकी दोनों पोतियां ही संभालेंगी। ये सुनते ही अनामिका बोरियत से मुंह बनाते हुए बोली, दादाजी प्लीज बिजनेस विजनेस की बातें फिर से मत शुरू कीजिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। अनामिका की बात सुनकर दादाजी ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और मन ही मन सोचा कि अभी इस लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल उन्होंने दोनों को अकादमी में एंट्री और एडमिशन से जुड़ी सारी इंस्ट्रक्शन दे दी थी। ये कोई नॉर्मल अकादमी नहीं थी, यहाँ एक से बढ़कर एक जामबाज और शूरवीर दहेर किए जाते थे। जैसे ही झलक ने एडमिशन फॉर्म देखा वो थोड़ा घबरा गई और अनामिका को बोली, इसमें तो बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी है, तुम जानती हो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मुझे बहुत कम उम्र में काम करना पड़ा था। तभी अनामिका ने झलक के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे फिक्र क्यों करती हो डियर सिस्टर, मैं हूं ना, डोंट वरी, तुम्हारी बहन सब संभाल लेगी।
अनामिका की ये बात झलक को सच में अच्छी लगी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा नहीं पाई। पहले वाली झलक होती तो शायद अब तक पूरी तरह एक्साइटेड हो चुकी होती, लेकिन इस बदली हुई झलक को खुद को संभालने में वक्त लगने वाला था। फिलहाल झलक अब अनामिका के साथ अकेडमी की ओर आगे बढ़ चुकी थी।